Function. रूप नंबर तीन, सदा यह नशा रहता है कि हम अभी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और आगे भी अनेक जन्म देव आत्मा रहेंगे। वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा है ना। वर्तमान का नशा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रहा है। अभी श्रेष्ठ हो तभी भविष्य देवात्मा बनेंगे। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा। महत्व वर्तमान का है तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। महत्व क्या कहा बाबा ने? वर्तमान को। वर्तमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, उपहार। तो वर्तमान क्या है? गिफ्ट है, सौगात है, उपहार है, गिफ्ट है। तो महत्व किसका है? वर्तमान का है। अभी श्रेष्ठ हो तो भविष्य देवात्मा बनेंगे। वर्तमान का भविष्य में मिलेगा। महत्व वर्तमान का है तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया लेकिन
वर्ष,
एक वर्ष गवाया कि दो वर्ष,
पांच
वर्ष। सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया लेकिन बहुत कुछ गवाया। संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। तो इतना महत्व सदा याद रहता है या कभी कभी याद रहता है? सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। भक्त लोग तो दुआ लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं और आपको बाप की दुआएं हर समय मिलती रहती है। तो दुआएं जमा करते हो या खर्च हो जाती है? जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है उसको क्या? वो बेफिक्र है, उनके पास कभी माया आ नहीं सकती। माया आती है या दूर से ही भाग जाती है या नजदीक आकर फिर भागती है, क्योंकि आएगी तो फिर भगाना भी पड़ेगा, लेकिन दूर से ही भाग जाएगी तो भगाने में भी समय नहीं लगेगा। ऐसे शक्तिशाली बनो। कितने शक्तिशाली? जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। जैसे कितने भी खौफनाक जानवर होते हैं लेकिन अगर आपके पास लाइट है, रोशनी है तो वो आगे नहीं आते। ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट सदा आपके साथ है तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तो दूर से भगाने वाले हो या नजदीक से भगाने वाले हो? क्योंकि समय अमूल्य है, समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। क्या बोली भाषा है तीव्र पुरुषार्थ की? समय को बचाना, टाइम को वेस्ट ना करना। तो तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात माया जीत, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी। युद्ध करने वाले नहीं तो सदा विजयी हो, कभी हार नहीं होती ना। देखो गाया हुआ भी है ना कि जहां बाप है वहां विजय है ही, बाप सदा साथ है तो विजय है ही। थोड़ा भी किनारा किया तो युद्ध करनी पड़ेगी। तो युद्ध करने वाले नहीं विजयी रत्न हो। कब तक युद्ध करेंगे? युद्ध करते करते क्या बनना पड़ेगा?
चंद्रवंशी।
तो चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो, सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी। तो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अनुभव हो, कहना नहीं अनुभव हो। अधिकार कभी रहे कभी नहीं रहे यह नहीं होता, अधिकार सदा साथ होता है। अच्छा तो क्या सुना? बाला कह रहे हैं कि सदा यही नशा है कि हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और आगे भी अनेक जन्म देवात्माएं होंगे, वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा। वर्तमान का नशा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रहा है, अभी श्रेष्ठ हो तभी भविष्य देवात्मा बनेंगे। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा, महत्व वर्तमान का है। तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है, सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया लेकिन बहुत कुछ गवाया। संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। तो इतना महत्व सदा याद रहता है या कभी कभी याद रहता है? क्यों महत्वपूर्ण है ये समय? इतना क्यों महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए बाबा कह रहे एक सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया, बहुत कुछ गवाया। क्या है इस समय में? यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी, सारे कल की कमाई का आधार है, संपूर्ण कल की आत्मा में रिकॉर्डिंग हो रही है।
संकल्प भी पढ़ जाएंगे वो फिर वहाँ
प्ले हो, वही रिकॉर्डिंग हो रही है।
अभी नहीं तो कभी नहीं,
अभी नहीं तो कभी नहीं, ये प्राप्ति का समय है।
एक का लाख
गुना, एक का लाख गुना का नियम यहाँ लागू हो रहा है।
चढ़ती कला
यहाँ ही चढ़ती कला है और कहीं किसी समय में चढ़ती कला नहीं है। और ये समय बाबा ने कहा अभी इस समय को वरदान है,
दिव्य गिफ्ट है,
लिफ्ट भी है और ये वरदान है। इस समय को, समय को ही वरदान है। जैसे भक्ति में कोई एक पर्टिकुलर समय होता है, उस मास में अगर कुछ किया जाए तो बहुत सारे पुण्य मिल जाते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म में रमजान हो, चाहे श्रावण मास हो या इस तरह के जो भी है, उस पर्टिकुलर दिन या उस पर्टिकुलर मास में अगर कुछ किया जाए तो उसका कई गुना मिल जाता है। तो ये समय भी वरदान ही समय, समय समाप्त तो युग समाप्त तो वरदान समाप्त,
पुरुषोत्तम समय,
पुरुषोत्तम बनने का समय। तो समय को ही यहाँ वरदान मिला हुआ है, इसके लिए इसका एक एक सेकंड अति महत्वपूर्ण है। बाबा ने दो बातों के लिए कहा, एक तो समय और दूसरा संकल्प। ना तो हमारे संकल्प वेस्ट हो ना तो समय वेस्ट हो। अपनी ही चेकिंग करनी है कि बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा ही क्या की है, तीव्र पुरुषार्थ समय को बचाना। अब जो समय को नहीं बचा रहा है वो तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। अगर हमारा समय ज्ञान और योग और धारणाओं का चिंतन को छोड़कर और किसी बातों में जा रहा है तो वो बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। इस संगम युग पर सबसे बुद्धिमान कौन है? जो समय और संकल्प दोनों को बचाए। श्वास और समय की एक रीति से देखा जाए तो श्वास और समय का एक साथ ही कनेक्शन है। बाकी जितनी संसार में बातें हैं वो सभी वापस आ सकती है। धन वापस आ सकता है, स्वास्थ्य भी वापस आ सकता है, विद्या जो खो गई है वो भी वापस आ सकती है, भाग्य जो चला गया शायद वो भी आ जाए, पर समय एकमात्र ऐसी चीज है कि जो कभी वापस नहीं आ सकती है। समय को वेदों में काल अश्व की तरह कहा गया है। अश्व है वेद, समय एक घोड़े की तरह है जो कि तेज चलता है। अथर्ववेद में अश्व की उपमा दी गई है समय को, जो इतना तेज चलता है। बाबा ने भी कभी मुरलियों में कहा है समय तो सबसे अधिक बलवान है, पर बाबा ने कहा है कि समय कौन है? तुम्हारी रचना है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा कहते हैं कि समय तेज दौड़ रहा है और तुम हो पीछे, और वो क्या करता है? नहीं, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, तुम पीछे, वो तुम्हारी रचना है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा कहते हैं कि समय पीछे मुड़ मुड़ के देखता है और कहता है, हे मेरे मालिक कहां तक पहुंचे हो? समय तुम्हारी रचना है, वो तुमसे आगे जा रहा है। तो समय अति बलवान है। प्रकृति आत्मा और परमात्मा को छोड़कर सभी समय के बंधन में बंधे हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा अध्यापक है। वो जो शिक्षक होते हैं वो पहले पढ़ाते हैं फिर परीक्षा लेते हैं, ये शिक्षक उल्टा करता है, पहले परीक्षा लेता है और फिर पढ़ाता है, बाद में अनुभवी बनाता है। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। क्या करता है ये? बड़े से बड़े घाव को भर देता है, ऐसे घाव जो कोई नहीं भर सकता। दिल पे लगे हुए आघात, चोट, दर्द, अल्टीमेट हीलर कौन है? टाइम। टाइम इज द हीलर। तो समय सबसे बड़ा चिकित्सक भी है, समय सबसे बड़ा अध्यापक भी है, समय अति बलवान है।
कमाई कर, कमाई कमाई कर सकते हैं घाटा,
दोनों चीजें है। समय से किस्मत बना, अगर समय को उपयोग करो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, अगर दुरुपयोग करो तो किस्मत बदल जाती है। यहाँ किस्मत का दूसरा अर्थ है, सेकंड लाइन में किस्मत ही बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया। बाबा ने कभी कहा है वर्तमान समय प्राप्ति का समय, फिर होगा पश्चाताप का समय। सबसे ज्यादा पश्चाताप कौन करेंगे? वो लोग जिनको ज्ञान मिला ही नहीं, जो बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञान मिल गया, उसमें भी कौन?
जिन्होंने
जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, जो उसने कहा वह नहीं किया। पता तो सब कुछ था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उससे भी ज्यादा और कौन करेंगे जो यहाँ रहने वाले हैं? सब कुछ मिला, बाबा मुरली मधुबन, परंतु वह पुरुषार्थ नहीं किया जो उन्हें करना था। तो पश्चाताप के दिन होंगे। बाबा ने कहा ब्राह्मण खून के आंसू आए, खून के। संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है, तो इतना महत्व सदा याद रहता है दिनचर्या में, कहीं खो तो नहीं जाते। सदा ये महत्व याद रहता है या कभी कभी याद रहता है? सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहे, ये महत्व सदा याद रहे। हर एक को ये देखना है कि मेरा समय कहां व्यर्थ जाता है, बातचीत करने में, यहां वहां की वार्तालाप, मौसम की चर्चा, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कहां जा रहा है समय? भक्त लोग तो दुआएं लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं, और आपको वाक की दुआएं हर समय मिलती रहती है। परमात्मा दुआएं तो हो रही है, समय वर्षा सदैव हो रही है, परंतु हम अगर कमरे में अंदर बैठे हैं तो उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। अगर हम अगर अपने ही अंदर बिजी है, अपने ही दुख दर्द में खोए हुए हैं, तो वो जो वर्षा हो रही है उसका हमें लाभ नहीं। बाहर क्या है हम देखे तो परमात्मा वर्षा और परमात्मा वरदान तो सदैव है ही है। एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक संस्मरण है, उसका रिकलेक्शन, उसमें वो लिखता है कि एक रात वो किसी नाव में बैठा है झील में, और वो नाव में बैठा कुछ लिख रहा है, क्योंकि अंधेरा था तो उसने उस नाव में, छोटी सी नाव में, एक दिया जलाया और दिए के प्रकाश में लिख रहा था या पढ़ रहा था बहुत देर तक, जैसे कि आधी रात हो गई, झील एकदम शांत है, वो लिख रहा है और बड़े मुश्किल से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो दिया सामने है और पढ़ रहा है या लिख रहा है। अचानक हवा आती है और दिया बुझ जाता है, तो उसे एकदम थोड़ी निराशा होती है, पर दिया बुझते ही वो देखता है बाहर पूर्ण चंद्रमा और इतना दिव्य प्रकाश है। उसको लगता है देखो ऐसी चांदनी रात और मैं क्या कर रहा था, मैं तो दिया जला के लिख रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर देखो तो इतना प्रकाश है, पूर्णिमा की रात है, वो तो पूर्ण चंद्रमा आकाश में है, इतनी अच्छी हवा बह रही है, पर वो इतना खोया हुआ था खुद में भी, उसे पता ही नहीं कि ये सब भी हो रहा था। हम इतना अपने अंदर ना खोए रहे कि हमको पता ही नहीं कि बाहर परमात्मा वर्षा हो रही है, दुआओं की, प्यार की, वरदानों की, वो हम मिस ना करें। तो भक्त लोग कितनी तकलीफ करते लेते हैं, और आपको बाप की दुआएं हर समय मिलती है, तो दुआएं जमा करते हो या खर्च हो जाती है? जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया नहीं सकती। परमात्मा दुआओं से झोली कब भरपूर होगी, उसकी दुआएं कब मिलेगी, वो हम पर कब राजी होगा, जब उसकी आज्ञा पर चलेंगे तब। माया आती है या दूर से ही भाग जाती है या नजदीक आकर फिर भगा भागती है, क्योंकि आएगी तो फिर भगाना भी पड़ेगा, लेकिन दूर से ही भाग जाएगी तो भगाने में भी समय नहीं लगेगा। ऐसे शक्तिशाली बनो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं करेगी। किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को कभी पूछा कि काम विकार कभी तुमको सताता नहीं, तुम ब्रह्मचारी हो, युवा हो, काम की उत्तेजना तुम्हारे मन को कभी हलचल में नहीं लाती? वो कहता है क्या काम तुम्हारे पास कभी आता ही नहीं? वो कहता है आता तो है, रोज आता है, पर मैं उसे दरवाजे के बाहर ही खड़ा रखता हूं। वो जब देखता है मुझे अंदर खिड़की से तो दिखता है कि मैं सदैव बिजी हूं, तो वो सोचता है जैसे ये खाली होगा तो मैं आऊं, पर मैं कभी खाली होता ही नहीं, मैं सदैव अपने आप को बिजी रखता हूं, तो उसको आने का चांस ही नहीं है। तो सदैव स्वयं को बिजी रखना किसमें, कुछ तो श्रेष्ठ कार्य में, रचनात्मक कार्य में, कुछ तो क्रिएटिव करने में, कुछ तो नया सीखने में, किसी ज्ञान के किसी पॉइंट को समझने में, किसी अव्यक्त वाणी का अध्ययन करने में, जितना जो बिजी है उसके पास माया नहीं आती। अगर बिजी नहीं है तो माया आ जाएगी। बाबा यहां उदाहरण दे रहे हैं, अगर शक्तिशाली है, शक्तिशाली का उदाहरण दे रहे तो माया दूर से आने, माया आने का हिम्मत ही नहीं रखेगी। जैसे कौन सा उदाहरण दिया, भाव नाचन होते, अगर लाइट है रोशनी है तो आगे नहीं आते, ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट सदा आपके साथ है तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तो दूर से भगाने वाले हो या नजदीक से भगाने वाले हो, क्योंकि समय अमूल्य है, एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी नहीं आ सकता, इसके लिए इसके महत्व को जानो। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक ही ऐसी निधि है जो परमात्मा ने विश्व की सर्व आत्माओं को समान रूप से दी है, ऐसा कोई नहीं कहता, हर एक के पास 24 घंटा है, हर एक, चलो वरदान किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, ज्ञान कम ज्यादा, पर समय एकमात्र ऐसी चीज है जो सारी आत्माएं विश्व की सबके पास 24 घंटे है। अभी कौन उसमें क्या कर रहा है, अभी हम इस समय यहां बैठकर ज्ञान चिंतन कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई व्यर्थ की बातें भी कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, किसी किसी संसार में जो आज के युवक है मौज मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार, वो इस समय सोने का समय है उनका, रात भर जागकर अभी सोते हैं वे लोग। मुंबई में जाओ तो ये पता चलेगा, पार्टी क्लब, कौन समय का किस तरह उपयोग कर रहा है। तो समय अमूल्य है, समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो लक्ष्य क्या रखना है कि हमारा समय कहीं वेस्ट ना जाए, एट एनी रेट कुछ भी हो जाए पर समय वेस्ट ना हो, निरंतर स्वयं को ऑक्यूपाइड रखना है, ज्ञान से, योग से, सेवा से, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, हर प्रकार की सेवा, कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में, पढ़ाई कम करते हैं ब्राह्मण, पढ़ना थोड़ा कम पसंद है, योग ज्यादा पसंद है। तो तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात माया जी, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी, युद्ध करने वाली नहीं तो सदा विजयी हो, कभी हार नहीं, कभी हार नहीं होती। तो देखो काया हुआ भी है कि जहां बाप है वहां विजय है ही, बाप सदा साथ है तो विजय है ही, थोड़ा भी किनारा किया तो युद्ध करनी पड़ेगी, तो युद्ध करने वाली नहीं विजयी रत्न हो। कब तक युद्ध करेंगे, युद्ध करते करते क्या बनना पड़ेगा, चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी, सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी। तो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अनुभव हो, कहना नहीं अनुभव हो, केवल कहना है मात्र नहीं कि हम विजय रत्न है, हम विजय रत्न है, हम विजय रत्न है, चलो कहेंगे तो भी कुछ तो होगा, परंतु यह अनुभव की बात है, अंदर ही अनुभव हो कि हम विजय रत्न है। रात में जब सोते हो तो ऐसा अनुभव हो कि हमारा जीवन सफल हुआ, हमारा ये दिन सफल हुआ। अपने आप को खुद अपनी ही पीठ थपथपाता हो, ऐसा अनुभव हो कि आज का मेरा सुबह से लेकर अब तक का दिन कहीं व्यर्थ नहीं गया, कोई व्यर्थ की बातें नहीं की, कहीं व्यर्थ घूमने फिरने में नहीं गया, कुछ व्यर्थ ऐसी चीजों में एंगेज नहीं हुआ कि जो श्रीमद के विरुद्ध थी, ऐसे संकल्प मन में नहीं आए। लास्ट संडे की 31st जो 25 दिसंबर की मुरली में क्या थी, हाथ उठाए ना बाबा ने इतने सारे, उसमें एक हाथ किया था रात को सोते समय मनसा वाचा कर्मणा, कोई गलती नहीं, ऐसा है तो हाथ उठाओ, कहा था ना सोते समय मनसा वाचा कर्मणा कोई गलती नहीं। तो हमारे मुख से ऐसे कोई बोल ना निकले हो, ऐसे कोई संकल्प मन में ना आए हो, ऐसे कोई कर्म ना हुए हो, किसी भी तरह से हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे ज्यादा टाइम कौन सा कौन वेस्ट करता है ब्राह्मणों का, सबसे ज्यादा समय किस में जाता है ब्राह्मणों का?
न्यूज, टीवी और
न्यूज,
टीवी
राजनीति में क्या हो रहा है,
टीवी ओपन करके रखते हैं,
टीवी सीरियल
देखने
को, तो मोबाइल में व्हाट्सएप में इन चीजों में जा रहा है,
साधनों में गैजेट्स में। उंगलियां कहां थी रखती है, मोबाइल सेलफोन, देखना क्या है। अगर कुछ कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर आए हैं आजकल कि जिससे ये पता चलता है आपने मोबाइल कितनी बार यूज किया, अगर देखोगे तो चौंक जाएंगे हर एक व्यक्ति। क्या देखना है, बस देखना है, बार बार चेक करते हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक करेंगे, बार बार ईमेल चेक करेंगे, बार बार फेसबुक चेक करेंगे, इसमें ही बुद्धि लगी रहती है, इसे निकल ही नहीं पाते, हमको पता नहीं, पर परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसमें आत्मा जैसे बंद गई है, सेलफोन्स में, इंटरनेट में, बैठते भी कहां है इंटरनेट में, रात में जब फ्री हो जाते हैं और देखते 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 11 बज जाते हैं। तो कुछ तो नियम से अपने आप को बांधना पड़ेगा, कुछ तो ऐसी कुछ करना पड़ेगा स्वयं की प्लानिंग की, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, चाहे मोबाइल, चाहे इंटरनेट, चाहे टीवी या जो भी है इस तरह का, घूमना फिरना या बातचीत, ऐसा दिनचर्या बनाओ कि जिसमें टाइम वेस्ट होने की मार्जिन ना हो। इतने से इतने बजे तक ये किया, इतने से इतने बजे तक क्लास किया, उतने से उतने बजे तक चिंतन किया, फिर मुरली की, फिर उसके बीच का जो समय इवन 15 मिनट भी है उसमें क्या करे, कुछ तो रचनात्मक, कुछ तो अच्छा सीखे, जैसे कुछ भाषा ही सीखना पर एक अभ्यास है कि नई भाषा सीखना, नई कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी भाषा, चाहे अंग्रेजी हो या और कोई भाषा, वो भी जो हमें बीच में समय मिलता है वो भी किस लिए, सेवार्थ। कुछ है जैसे टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, ये भी कितना अच्छा है, ऐसे अगर कोई सीख ले तो न जाने कितनी सेवा करे। रचनात्मक कार्य, बजाय इसके कि हम ऐसे व्यर्थ में अपना समय गवाए, कुछ तो रचनात्मक जिससे आत्मा की तरक्की हो, उन्नति हो, और पुरुषार्थ में भी वो हमारी उन्नति का साधन बने, ऐसा कुछ तो करना है। फिर आगे बाबा कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी करने वाले हो ना, सेवा करना अर्थात खाता जमा करना, सेवा नहीं है, क्या है ये, मेवा है,
मेवा
नाम सेवा है लेकिन है मेवा। उस दिन जानकी दादी जी हॉस्पिटल में आए थे तो जानकी फाउंडेशन का के बारे में कह रहे थे नाम मेरा है पर असली काम तो तुम कर रहे हो। जानकी फाउंडेशन विश्वभर में है ना, तो नाम तो मेरा है पर काम तो तुम कर रहे हो। तो सब जगह सेवा अच्छी चल रही है ना, सेवा और संपूर्णता दोनों में आगे हो ना, निर्विघ्न सेवा में आगे हो, निर्विघ्न सेवा यही संगम युग की विशेषता। इसके लिए बाबा से अमृत वेला निर्विघ्न भाव का एक वरदान रोज लेना है, एक निर्विघ्न भाव, एक सफलता मूर्त और एक विजयी, तीन मुख्य वरदान है। जैसे कि बाबा के सामने हम बैठे हैं, बाबा तिलक लगा रहा है, विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव, और तीसरा निर्विघ्न भाव। तो निर्विघ्न सेवा है या विघ्न आते है, समाचार तो बाप को पता पड़ता है ना कि विघ्न आते हैं। गुजरात को जितना समीपता का वरदान है और धरनी भी सात्विकता के वरदान की है, ऐसे ही सदा निर्विघ्न रहने के वरदान में सदा आगे रहना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जितना ज्यादा सेवा उतना ही निर्विघ्न। तो निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 लेना है, कोई भी सेंटर पर कोई खिटपिट नहीं है, या अंदर थोड़ी थोड़ी होती है, आत्माएं बहुत अच्छी हो, सिर्फ थोड़ा हरेक निर्विघ्न बन आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ करो। संख्या भी अच्छी है, सेवा भी अच्छी है, यह विशेषता है, लेकिन अब यह विशेषता ऐड करो कि गुजरात निर्विघ्न सेवा में नंबर वन हो। हिम्मत है, बाप को अच्छे लगे तभी तो, बाप को अच्छे लगे तभी तो अपना बनाया ना, तो अच्छे तो हो ही, अब विघ्न आने नहीं पाए। विजय का अधिकार सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। अच्छा, विजयी भव। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, सेवाओं में निर्विघ्न बनने की बात है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मनसा सेवा ही हो, उसमें भी कुछ विघ्न आते हैं। मनसा की सेवा, वाचा की सेवा के विघ्न और कर्मणा सेवा के विघ्न, जो भी विघ्न है उनको परखना, समझना और उनको समाप्त करना। तो क्या कह रहे बाबा, निर्विघ्न सेवा यही संगम युग की विशेषता है। क्या विशेषता है?
निर्विघ्न
सेवा। जो भी सेवा हम करने जाए वो निर्विघ्न हो जाए और सफलता हमको प्राप्त होगी। तो आज हम इस बारे में लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, खाली 10 पॉइंट्स। सेवाओं में विघ्न क्या क्या है, अपनी सेवाओं में पर्सनल पॉइंट्स, ऐसे नहीं जो सारे ही डाल दिए। हम जो सेवा करते हैं उसमें हमारी सेवा जो है सुबह से लेकर रात तक, उसमें कौन कौन से विघ्न आते हैं, खाली लिखना और पहचानना उनको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपने आप चलेगा चिंतन कि अभी इसको मिटाए कैसे। पहले हम जाने तो कि ये भी विघ्न है, हमने उन्हें माना ही नहीं कि विघ्न है, हम सोच रहे हैं ये स्वाभाविक है, ऐसा तो होता ही है, पर चाहे वो बहुत ही छोटी बात हो सकती है, इतनी छोटी कि हम उसे मानते ही नहीं कि विघ्न है, परंतु रोज हमारी स्थिति को वो गिराता जरूर है थोड़ा सा सूक्ष्म। ऐसे वो कौन से विघ्न है, ऐसे कम से कम 10 विघ्न की लिस्ट निकालनी है कि मेरी जो सेवा है उसमें विघ्न रूप क्या क्या है, मेरी जो सेवा है उसमें मेरी स्थिति कौन गिराता है, मेरी जो सेवा है उसमें आते ही संकल्पों की जो धारा है उसमें कौन विघ्न बन जाता है। अमृत वेला जो शक्ति अर्जित की, अमृत वेले के बाद, ज्ञान सुनने के बाद, इस क्लास के बाद, इस क्लास के चिंतन के बाद, मुरली के चिंतन के बाद, ये सारी स्थिति बनाई 9 बजे तक बहुत शक्तिशाली, और जैसे डिपार्टमेंट में गए सामान में मैं फरिश्ता हूं, और देखा किसी ने कोई काम नहीं किया, अब देखा मीना सिस्टर पेशेंट का कुछ किसी ने किया नहीं, स्टाफ ड्यूटी पर आना था आया ही नहीं, और बताया भी नहीं कि नहीं आ रहा हूं, अभी उसकी जगह किसको लगा है। अभी मीना सिस्टर तो गए थे सामान से, मैं फरिश्ता हूं और मौन में, और देखा कि ड्यूटी पे कोई है ही नहीं, तो फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर कुछ तो होगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छी स्थिति, योग और ज्ञान और तपस्या, और जैसे कर्म क्षेत्र में गए कि हलचल चालू, क्योंकि परिस्थिति हर दिन अलग अलग है, हर दिन नई नई, जो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है वहां पर, ऐसे नई नई, हर दिन नई नई चीजें होती है, हर दिन नई नई माया, नए नए रूप से, नए नए रंग रूप, भेद बदल बदल कर आती है, बहुरूपी है माया, ठगती है ना, माया महा ठगनी हम जानी, कबीर में कहा है, ऐसी ऐसी ठगती है कि हम कहा ना, समय पहले परीक्षा देता है फिर सिखाता है, तो हमें समय से ज्यादा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। हमारे कर्म क्षेत्र में क्या क्या माया, सुबह तो कोई माया है ही नहीं खास, बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, मधुबन में है, जाते ही योग लग गया, जाते ही अशरीर, जाते ही विश्व को सकाश दे रहे, मुरली का चिंतन कर रहे हैं, मन एकदम शांत है। 9 कितना बजे चालू होती ड्यूटी? 8 बजे 8 बजे ड्यूटी चालू, 8 किसी की 9, वहां से माया की दबे पाव माया प्रवेश करती है, आकर बैठ जाती है बाजू में, हमें पता ही नहीं कि वो बैठी है, और यहां तो माया दिखाई नहीं देती है, क्योंकि माया सफेद वस्त्र और बैच लगाकर यहां, श्वेत वस्त्र धारी नहीं है माया, यहां पर पता ही नहीं चलता ये ही माया है, और बैच भी है उसके पास, स्टैंप भी है मधुबन निवासी की, तो पता नहीं चलता ये माया है। अभी इंटरनेशनल योग है, कोई आ गया हमारे पास कहता है चलो भेल बनाएंगे, अभी 6:30 बजने को 10 मिनट बाकी है, हमको भी लगता है अभी जाना तो है योग में, पर चलो इसके साथ भी जाते, इसको कैसे मना करें। तो गए और देखा पौने सात हो गए, तो गए ना 15 मिनट, ये भी तो माया ही ना। अभी हम कुछ करने जा रहे थे तो किसी ने हमको रोक दिया और कुछ और करने लेके गया। अभी हम सोने ही जा रहे थे तो किसी का फोन आ गया और 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट चले गए। चाहे कोई भी बात हो, चाहे सेवा की हो, पर वो दूसरे दिन भी हो सकती थी, तो ये भी तो विघ्न ही हो गया। हम इसमें विघ्न कहां मान रहे हैं। हर वो चीज एवरीथिंग दैट इज स्टॉपिंग अवर पुरुषार्थ, एवरीथिंग जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न है, जिससे हमारा योग का चार्ट और हमारे संकल्पों का जो श्रेष्ठ प्रभाव है वो कम हो रहा है, रुक रहा है, हमारे चिंतन में हलचल उत्पन्न हो रही है, वो हर एक चीज विघ्न है। उसको पहले जानना कि ये है, बस मिटाने की बात नहीं कर रहे, खाली जानना, समझना कि ये वो है, तो वो स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट होगी, स्वतः ही फिर चिंतन चल, क्योंकि चिंतन शक्ति तो बहुत है हमारे पास। अगर हमको पता चल जाए ये है तो हम सारा शक्ति लगा देंगे उसको हटाने की, पर हमको पता ही नहीं कि वो है। तो फर्स्ट स्टेप इज ऐसे 10 विघ्न निकालने हैं जो कि हमारे सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में अगर हमारा सेवा क्षेत्र शक्तिशाली हो गया तो ये सुबह और शाम का जो समय है अति शक्तिशाली हो जाएगा। हमें पुरुषार्थ कौन सा करना है, ये 9 से लेके तो 5 या 6 बजे तक, ये अगर सफल हो गया तो शाम तो कर ही रहे योग, वो तो है ही शक्तिशाली, केवल सुबह शाम को छोड़ दो। ये दिन को अगर शक्तिशाली बना दिया जाए तो सुबह और शाम और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। केवल लक्ष्य रखना है कि इस बीच कहीं झगड़ा ना हो जाए किससे, कहीं अनबन ना हो जाए किसी से। झगड़ा हो गया तो बस हो गया, फिर तो शाम का योग और दूसरे दिन का सुबह का अमृत वेला समाप्त। किसी ने हमको कुछ कहा और हमने उसे कुछ कह दिया तो उसको तो आराम से सो गया, क्योंकि उसको पुरुषार्थ करना है नहीं, करना तो हमें था, हमारा तो योग गया, ना तो नींद हुई, ना तो शाम का योग हुआ और दूसरे दिन का अमृत वेला भी गया, तो नुकसान किसका हुआ। तो इससे अच्छा ही है कि भाई वही बड़ा है, चलो मान लो तुम बड़े हम छोटे, जीतने दो। तो सेवाओं में विघ्न, और दूसरा विषय कौन सा है यहाँ पर, समय, समय कहीं वेस्ट ना जाए, और कौन से विघ्न है उसको लिखना, ये आज का हम सभी एक होमवर्क करें। अच्छा, ऑप्शन।